नमस्कार श्रोताओं, मैं मौजूद हूं आज गुड़गांव के कोर्ट में और मेरे साथ गणेश जी हैं जो एक एडवोकेट हैं और यहां पर एक वर्कर के मुद्दे पर यहां पर केस लड़ रहा था उसके लिए आए हैं और जानते हैं क्या आज रिजल्ट निकला है और क्या स्थिति है। स्वागत है एडवोकेट साहब आपका।
नमस्कार
जी, क्या रहा आज जो कोर्ट में इतने दिन से केस चल रहा था, क्या रिजल्ट निकला और अभी क्या कहा जा रहा है कोर्ट के?
कोर्ट में अभी ये कहा जा रहा है कि पिछले तीन डेटों से वर्कर को बुलाया जा रहा है लेकिन वर्कर आ नहीं रहा है और उसमें मैंने लगातार फ़ोन कर रहा हूँ उसको वर्कर को लेकिन वर्कर आ नहीं रहे हैं और उसमें जो सेटलमेंट का था तो सेटलमेंट के लिए कंपनी तैयार है, कंपनी ने अब चेक लेके आया है लेकिन वर्कर तीन डेट से आ नहीं रहा है। तो इस वजह से कोर्ट ने आज बहुत नाराज़गी जताई कि वर्कर नहीं आ रहा है और इस वजह से हम कोर्ट से रिक्वेस्ट किए हैं कि अगला डेट दे दे लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया इस बात को कहते हुए कि आपने लगातार तीन बार डेट ले चुके हैं और एक ही चीज़ के लिए कि हम सेटलमेंट करेंगे लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। तो ये बात मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अब कैसे इसको रिजॉल्व कराऊं क्योंकि वर्कर ही नहीं है।
आपको अवगत कराना चाहेंगे, एक महिला थी जो यहां IMT में एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी टेक्सटाइल में और उन्होंने कुछ ही दिन काम किया था उसके बाद उनको हटा दिया गया। इसके बाबत जो है एडवोकेट गणेश जी ने उनका केस किया था और आज उनको मालिक उनका चेक लेके आया है फिर भी वो मौजूद नहीं है। और ऐसे कितने केस वकील साहब आपके उसमें आते हैं कि वर्कर्स का रिजॉल्व भी हो जाता है, चेक भी एम्प्लॉयर लेके आता है और वर्कर्स नहीं आते हैं?
तो इसका जो हम परसेंटेज है, परसेंटेज आप हम 1% भी नहीं कह सकते, 0.1 कह सकते हैं, 1.2 ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसका रेशियो बहुत कम होता है लेकिन ज़्यादातर केसों में जो है मजदूर अपीयर होता है अपने मैटर में और जब रिजॉल्व होता है तो अपना सारा चीज़ करा के, मतलब जो भी हिसाब वगैरह जो भी है अपना बनता है उसका, जो भी अमाउंट बन रहा है उसको लेके अपना घर जाते हैं। लेकिन कुछ केसेज में ऐसे हो रहे हैं कि जैसे कि आज ये हमारे लिए दूसरा केस था जिसमें मैं आया और वर्कर तीन डेट से लगातार नहीं आ रहा है और इसके लिए हमने बहुत कोशिश की और फ़ोन भी किया तो इसमें तो ये है कि हर बार वो नंबर बदल लेती है और जिसके कारण मुझे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि उससे बात करने के लिए कि कैसे बात करें, उसको बुलाएं। लेकिन इस बार जो है फाइनली बात भी हुई थी कि हम आ रहे हैं लेकिन बात होने के बावजूद भी वो नहीं आई।
तो ये क्या हुआ था इस महिला के साथ और किस मतलब कहाँ ये काम कर रही थी, क्या हुआ था थोड़ा सा अगर विस्तार से बताओ, कितनी डेट अभी तक लग चुकी और इतनी जल्दी केस रिजॉल्व होगा?
इस केस में जो है इनका जो है केस जो था पहले जो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास चला था और उसके बाद रेफर होके, क्योंकि जो अमाउंट उस समय दिया जा रहा था जो डिमांड कर रही थी उसको था कि रीइंस्टेट कराओ लेकिन रीइंस्टेट नहीं हो पाया, कंपनी ने नहीं कहा कि हम वापस नहीं लेंगे काम पे, तो इसके लिए हम क्लेम डाले कि हमें काम पे वापस लिया जाए और साथ साथ हमें मुआवजा के सहित दिया जाए बैठे दिनों का, जो कि कंपनी एग्री नहीं हुआ। फिर फाइनली जब कोर्ट में गया तो एक साल बाद कंपनी ने ये कहा कि हम वापस तो नहीं ले जा सकते लेकिन अगर आप अपना जो हिसाब है वो आप अगर अमाउंट लेना चाहते हैं हम वो तो सेटल करने के लिए तैयार है। तो इस पे जो मजदूर है वो आई थी एक डेट पे और दोनों ने बातचीत की और कोर्ट के सामने बात हुई तो उन्होंने जो अमाउंट बोला था लगभग अप्रोक्सीमेट उतना कंपनी लेके आई अगले डेट पे लेकिन उस डेट के बाद से वो मजदूर अभी तक नहीं आई है।
अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्कर्स हैं या मैनेजमेंट में भी हैं, उनको HR के थ्रू कहा जाता है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए नहीं तो हम निकाल देंगे, ऐसा होता भी है, निकाल भी दिया जाता है। तो उस स्थिति में जो है एक वर्कर क्या करे जब उस पर ये प्रेशर बनाया जाए?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई HR या कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट कोई भी अगर आपके ऊपर प्रेशर बनाता है तो वो प्रेशर बना के अगर साइन करवाता है तो सबसे पहले तो ये मना करना है कि हमको साइन नहीं करना। अगर वो जबरदस्ती किसी फोर्स के थ्रू करता है कि जैसे कोई डराना धमकाना करके, तो जैसे ही अगर जबरदस्ती करवा लिया तो इमीडिएट जाके आप पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन दर्ज कराएं कि हमसे जबरदस्ती एक कागजात पे साइन ले लिया गया है जो कि हम करना नहीं चाहते, इस तरह का एक शिकायत दर्ज करें और साथ में उसका रिसीविंग पुलिस स्टेशन से, कंसर्न पुलिस स्टेशन से आप वो रिसीविंग ले लें, उसके बाद मामला आप फाइल करे कोर्ट में कि हाँ इस तरह का जबरदस्ती हुआ है, लेकिन पहले इमीडिएट आपको पुलिस में कंप्लेन करना पड़ेगा कि ये चीज हुआ है हमारे साथ।
और किस लेवल तक जो है वर्कर्स कैटेगरी में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी थोड़ी सी हाई होती है या 40-50 हज़ार के समथिंग होती है और मैनेजमेंट उनको जो है कहता है कि रिजाइन करो। हम एक्सपोर्ट लाइन में भी देखते हैं कि जो चेकर लेवल पे लोग हैं उनसे भी कहते हैं कि रिजाइन करो। तो किस स्थिति, किस सिचुएशन में या किस कैटेगरी की जो सैलरी है वो वर्कर्स में आती है, उसके बाद वो कोर्ट, लेबर कोर्ट में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला।
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है कि अभी तक तो है कि 21,000 है ना उसके ऊपर, लेकिन ये चीज जो है बेसिक पा है, बेसिक और उस पे DHRA का होता है कि अगर बेसिक, अगर किसी भी वर्कर का सैलरी अगर 50,000 मिल रहा है लेकिन उसका जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी अगर उसका 10,000 या 12,000 या 15,000 दिखा रहा है तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जाएंगे, लेकिन जिसका सैलरी ही 50,000 बेसिक दिखा रहा है तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे, फिर सिविल सूट में जाएंगे उसमें, तो वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे कि सुपरवाइजर और बाकी जो स्टाफ मेंबर है वो वर्कर के डेफिनेशन में नहीं आता है, बेशक से उसकी सैलरी कुछ भी हो, लेकिन अगर वो डेजिग्नेशन पे भी है तो उसको वर्कर नहीं कहा जाएगा, वर्कर के डेफिनेशन से वो बाहर होता है।
मतलब सैलरी क्राइटेरिया होगा या पोस्ट क्राइटेरिया होगा, बेसिक सैलरी क्राइटेरिया होगा?
देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मेन तो एक तरफ ये कहता है कि नहीं सैलरी क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने एक साल पहले एक केस लड़ा था, उसकी सैलरी तो कम थी लेकिन उसका जो पोस्ट था सुपरवाइजर का था, लेकिन इस बात को कोर्ट कहते हुए कि सुपरवाइजर है इसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं आएगा, केस खारिज कर दिया कोर्ट ने, लेकिन जबकि सैलरी उसकी कम थी, तो उसको भी हम आगे सोच रहे थे कि हाई कोर्ट जाए, लेकिन आगे वर्कर तैयार नहीं हुआ इस बात को लेके, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि इसमें सैलरी क्राइटेरिया को आप देखते हुए इसको वर्कर के डेफिनेशन में लाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस पे ये कहा कि नहीं ये जो है इसका पोस्ट जो है सुपरवाइजर का था इसलिए ये वर्कर के डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन सैलरी कम था तो वर्कर आगे फर्दर काम करने के लिए, केस करने के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं हो पाया, जिस वजह से हम उस केस को छोड़ना पड़ा।
अच्छा, टर्मिनेशन की एक धौंस दिखलाती हैं कंपनियां कि टर्मिनेट कर देंगे, तो वर्कर डर से जो है रिजाइन दे देता है या उससे लिखा लिया जाता है, तो ये टर्मिनेशन का क्या कैटेगरी है, क्या कैटेगरी है, क्या इससे वर्कर का जो केस है वो कमजोर होता है?
देखिए पहली बात तो है जो कि अगर टर्मिनेशन कर ही रहा है तो रिजाइन मतलब टर्मिनेशन बात एक ही हो गया, तो पहली बात तो है अगर वो टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हम टर्मिनेट करेंगे इसको, अगर प्रोबेशन पीरियड में है तो फिर तो आप नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जब 240 डेज कंप्लीट हो जाता है तो आप लायबल हो जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट खड़ा करने के लिए उस मामले में। तो अगर 240 डेज के बाद अगर कंपनी निकालता है या कुछ ऐसा दबाव दे के अगर टर्मिनेट करता है तो आप वापस काम पे जाने के लिए कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें कोर्ट में आप स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो है आप अपना फाइल करेंगे और वो क्लेम के थ्रू आप रिइंस्टेट हो सकते हैं।
अच्छा, ये टर्मिनेट अगर कंपनी करती है तो क्या कितने महीने की सैलरी उसको एडवांस में देनी पड़ती है, क्या कुछ ऐसा भी प्रावधान है कि सैलरी कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने की बहुत देना पड़ेगा या कुछ ऐसा?
देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट जो लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है सारा टर्म एंड कंडीशन, उसमें टर्म कंडीशन होता है बहुत सारे। पहले क्या होता था कि कम से कम 3 महीने नोटिस पीरियड का होता था, लेकिन अभी जो देख रहे हैं उसमें 1 महीने नोटिस पीरियड का है, अगर कंपनी अपने तरफ से अगर टर्मिनेट कर देती है आपको तो 1 महीने की सैलरी देगी मुआवजा के तौर पे कि आपने टर्मिनेट किया। अगर वर्कर छोड़ देता है तो वर्कर को भी वही रूल लागू होता है कि बिना बताए आप छोड़ रहे हैं तो आपके ऊपर भी 1 महीना सर्व करना पड़ेगा या 1 महीने का पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, ये चीज होता है। लेकिन यहां पर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा गया है, कितना दिन पीरियड दिया गया है कि 1 महीने या 3 महीने
जी। अच्छा, अब हम फिर दोबारा उसी मुद्दे पे आते हैं कि जो जिन लोगों के केसेस चले और रिजॉल्व हुए वो लोग नहीं आते अपना चेक लेने या जो एम्प्लॉयर लेके जैसे आज भी वेट कर रहा है आप और उनको कॉल कर रहे हैं वो नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्या लगता है आपको कि इतने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में हैं मजदूरों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है कि नहीं आते?
देखिए ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है कि मैं भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन अभी तक कोई ऐसा इसका समाधान निकल के नहीं आया कि क्यों नहीं आ रहा है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इशू तो होगा, या तो उसको लग रहा होगा कि जो जो बात कर रहे हैं उनके बातों में ये है कि आप एक बार आप ये कहते हैं कि हम इतने में एग्री हैं और फिर दोबारा उसको कोई भड़का दिया कि नहीं इतना नहीं इतना मिलना चाहिए, तो इस वजह से भी हो सकता है, मैं इसको अश्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी और के बहकावे में आने से या कोई ऐसा कुछ होगा कि नहीं इतना नहीं ये होना चाहिए, इतना नहीं वो होना चाहिए, इस वजह से भी एक रीज़न ये हो सकता है, लेकिन ये कितना सही है ये इसकी जानकारी हमें नहीं।
तो ये ऐसे कितने केस अभी तक आपकी प्रैक्टिस के दौरान आए हैं, इतने साल का आपको एक्सपीरियंस है, कितने केसेस आप ऐसे आए जिसमें जो है हकदार अपना पैसा मांगने ही नहीं आया, वर्कर आया ही नहीं?
दो केस अभी तक आया है, अभी तीन साल में दो केस आया है जिसमें कि जबकि कोर्ट में जमा कर दिया एम्प्लॉयर ने जो चेक ला के जमा कर दिया कि हाँ जितने में ले, जबकि ऐसा नहीं कि ऐसे जमा कर दिया, दोनों पक्षों को सुना और फिर जाके दोनों में बात हुई, जो एक अमाउंट तय हो गया उस अमाउंट पे उन्होंने उसका चेक ला के उतना दे दिया, कोर्ट में जमा भी है वो, लेकिन वर्कर लेने ही नहीं आया।
तो ये कितने दिन तक वैलिड रहेगा, कब तक वर्कर आ जाए, या कुछ साल के बाद ये फिर जो है मतलब पेंडिंग में हो गया, या जो है?
देखिए इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं अभी, मुझे एक बार पता करना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे गुड़गांव से गणेश जी को, एडवोकेट गणेश जी को, जो मजदूरों के हक़ की आवाज़ कोर्ट तक पहुंचाते रहते हैं, उनके हक़ के लिए लड़ते रहते हैं। यदि आप भी कोई बात कोई ख़बर यहां पर साझा करना चाहें तो श्रमिक वाणी नंबर 3 दबाकर अपनी बात को साझा करें। धन्यवाद।